Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Aradesh Chaitangaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
तो इसीलिए पूरे आने के पहले से सारे व्यवस्था को पूर्ण रूप से व्यवस्थित करना, किस परिवेश में आना है, कौन लोग आपको वेलकम करने वाले हैं, किस रूप से आपका स्वागत होने वाला है, सब कुछ परिस्थिति को किसने क्रिएट किया। और आप तो महाराज आगे बिना बोले, बिना समझे, बिना ये किए, और आप आगे, इतना ही नहीं है, हम आगे हैं और हमको बड़ा अच्छी तरह से वेलकम किया गया। तो ये कौन है, कुतस्म जाता, इसलिए इतना निश्चय समझ लेना चाहिए कि भाई केवल खिलाने पिलाने वाले वही है, ऐसा नहीं, किससे उत्पन्न हुए। और इसी के साथ संबंध उसको रखना चाहिए जीवामा केना, कैसे हम जी रहे हैं, कौन जिला रहे हैं, वही प्रश्न। जिलाने वाले कौन है जो खाना देते हैं, ऐसे ही सोचते हैं कि बिना खाए मर जाएंगे, तो जो भोजन दे रहे वही खिलाने वाले। अरे भाई, जीव हो करके, मनुष्य हो करके हमारे लिए हम सोचते हैं, परंतु सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड में सब में जीव है, और सब जीवों की रक्षा करने वाले कौन है, मौलिक प्रश्न है। इसीलिए कुतस्म जाता, कुतो वयम कार्यकरणवंतो जाता, स्वरूपेण जीवानाम उत्पत्य असंभवात् तथा च श्रुति ही। हाँ, स्वरूपेण जीवानाम उत्पद्यद्य असंभवात्। स्वरूप की अगर विचार किया जाए, मूल, तब तो महाराज जीव का उत्पत्ति है ही नहीं, असंभव। क्योंकि अद्वैत वेदांत का निश्चय तो यही है, एकमेवाद्वितीयम, और वो केवल आभास के कारण आप अपने को अलग रूप से, जीव रूप से जान रहे हैं, जीवात्मा रूप में। तो इसीलिए यहां भाष्यकार याद दिला रहे हैं, स्वरूपेण तू, अगर स्वरूप का चिंतन किया जाए, मूल तत्व का विचार किया जाए, तो जीवानाम उत्पत्ति संभवात्, जीवों की उत्पत्ति तो असंभव है। और इसके पीछे युक्ति दे रहे, श्रुति प्रमाण दे रहे हैं, तथा च श्रुति न जायते म्रियते वा विपश्चित, न जायते म्रियते वा विपश्चित। वो जो आत्मा है, उस आत्मा अस्तित्व का न तो उत्पन्न होता है न जन्म, विपश्चित। विपश्चित लोग ऐसे कहते हैं, अनुभवी, साक्षात्कार करने वाले विद्वान महापुरुष जो है इस प्रकार का कथन करते। जीवापेत बावकिलेदं म्रियते न जीवो म्रियते इति जरा मृत्यु शरीरस्य अविनाशी वा। अरे अयमात्मा अनुच्छित्ति धर्मा इति तथा च स्मृति अज शरीर ग्रहणात् संजात किं कीर्त्यते इति। दृष्टांत के द्वारा यह शरीर जो है, उत्पन्न शरीर का संभव नहीं है, वही प्रतिपादन किया जा रहा है। प्रथम श्रुति कठोपनिषद के द्वारा बतलाया कि वह आत्मा न तो उत्पन्न होने वाला और न म्रियते मरने वाला है। आप उत्पन्न होने वाला मरने वाला है कि नहीं? आत्मा तो है भाई, क्या लगता है? आपके बारे में आत्मा तो मान्य है कि आत्मा मरने वाला नहीं है, जन्मने वाला नहीं है, मेरा स्वरूप क्या है। हाँ वो कई बार हम ऐसे सोचते ना, आत्मा है मैं तो मरने वाला, ऐसे नहीं। आत्मा शब्द का प्रबोध स्वात्म रूप से चिंतन करो। इसलिए मेरा मैं जन्मने वाला मरने वाला, जन्मने वाला को अभी विचार मत कीजिए, वो तो हो गया आ गया कैसे पता। मरने वाला नहीं, यही इतना ही अगर निश्चय हो जाए तो बड़ा बल मिलता है कि नहीं, मैं मरने वाला नहीं हूं। और फिर आत्मतत्व का प्रतिपादन छांदोग्य उपनिषद में आया। कितने बार? 9 बार किनको उपदेश दिया? श्वेत केतु को। पिता बार बार समझाते हैं और पुत्र जो है उदास होकर के देखते रहते हैं कि अभी भी समझ में नहीं आया। तब पिताजी कहते हैं कि एक वृक्ष के नीचे बाप बेटा जो है ब्रह्म तत्व का विश्लेषण करने बैठे। पिताजी कहा कि ये जो वृक्ष देख रहे हो मही रूह, इसके अग्र भाग में अभ्याहन्यत, जोर से जरा आघात करो। तो वो जोर से आघात करने से उनको क्या दिखा? जीवम श्रवेत। वो देखते हैं कि वो जो है आघात चोट पहुंचा, उससे वो जो है रस जो है क्षरित होने लगा। मध्य अभ्याहन्यात, बीच में थोड़ा आघात करो, वहां भी जीवम श्रवेत। वहां भी कह रहे यहां भी जीव का श्रवण हो रहा है। अंत्य अभ्याहन्यात, वहां भी जीवम श्रवेत। किसी एक डाला पर जोर से चोट पहुंचने से वो जो है अलग होकर के सुख जाता है। अब ऋषि अपने पुत्र को कहने लगा कि देखो तुम जो आघात किए हो वो मर करके नहीं गया, वो जीवित है, उसका प्रमाण है कि उससे वो रस जो है क्षरित हो रहा है। अतः जिस शाखा में जोर से चोट पहुंचा, आघात किया, वो शाखा जो है धीरे 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 सूख गया। तो इससे क्या निश्चय होता है पुत्र? जीवा पेत वाव किलम इदम म्रियते न जीवो म्रियते। जीव की मृत्यु नहीं है। जीव जहां से अपने को समेट लेते हैं वो अंश का, उस अवयव का जो है नाश हो जाता है। इससे जीव की मृत्यु ऐसा नहीं माना जा सकता है। भाई हमारे शरीर में भी तो क्या क्या लकवा पैरालाइज क्या क्या होता है। इसका मतलब है कि किसी का मान लीजिए राइट साइड में हो गया तो उसको आप मुर्दा मानते हैं क्या? उसमें से कोई एक सत्ता, कोई एक शक्ति जो है अपने को सीमित संकुचित कर लिया, तो इसका मतलब है पेपीयमाना मोदमाना तिष्ठन्ति। ऋषि अपने पुत्र को बोले देखो ये वृक्ष ये महिरूह अभी भी जीवित है और वो मिट्टी से पानी रस को लेते हुए पेपीयमाना पान करता हुआ मोदमाना आनंद से रह रहा है, परंतु तुम जिस डाला में जोर से चोट आघात पहुंचा वो डाला सूख गया। तो इसका मतलब ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो मर गया वृक्ष। तो इससे क्या निश्चय बतलाते हैं कि जीवो न म्रियते। भाई जीव का मृत्यु नहीं है। जीवा पे तकिल वाब इदम म्रियते। जीव वहां से हट जाना वो अलग है, परंतु जीवो न म्रियते। इसीलिए हमारा शरीर का तो अर्थात जीव का तो जन्म संभव नहीं है, न तो मृत्यु। और फिर द्वितीय श्रुति दे रहे जरा मृत्यु शरीरस्य, एकदम स्पष्ट लिखते हैं यह शरीरस्य, इस शरीर के हमारा जरा और मृत्यु है। अविनाशी वा अरे अयम आत्मा अनुच्छित्ति धर्मा। अरे इस अविनाशी आत्म तत्व जो है, आत्मा जो है अविनाशी है, अनुच्छित्य धर्मा अर्थात अनुच्छित्य धर्मा शब्द का है वो उच्छिन्न होने वाला नहीं है, नाश होने वाला नहीं है, उच्छित्ति धर्म शरीरस्य अनुच्छित्ति धर्म आत्मा तथा च स्मृति अज शरीर ग्रहणात् संजात इति कीर्त्यते। महाराज इस अजन्मा शरीर ग्रहण करने वाला जन्म लेता है, जो आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, अजन्मा है, वो जब इस शरीर में प्रवेश करता है तो ऐसा माना जाता है कि शरीर का जन्म हुआ। इसीलिए अजह अपि अज होते हुए भी अजन्मा होते हुए भी शरीर ग्रहणात शरीर के ग्रहण से संजात वो जय मानो जन्म लिया इति कीर्त्यते इस प्रकार से कहा जाता है। तो मूल प्रश्न क्या था, द्वितीय प्रश्न कुतस्म जाता, ठीक है, कुतस्म जाता, हम लोग किससे उत्पन्न हुए महाराज। अब उस प्रश्न को उठा करके भाष्यकार याद दिला रहे कि जन्म तो है नहीं भाई, फिर प्रश्न कैसे संभव है, और चूंकि जन्म नहीं है इसके पीछे श्रुति प्रमाण के द्वारा सिद्ध किया कि उस एक अद्वितीय आत्मा अस्तित्व का जन्म नहीं है। अब इसके और भी उत्तर देने वाले हैं, आगे देखिए प्रश्न का उत्तर। तृतीय प्रश्न क्या है, किंच भाष्य का देखिए, किंच जीवाम केन केन वा वयम् स्रष्टाः संतो जीवामेति स्थिति विषयः प्रश्नः। किंच और भी जीवाम केन, महाराज ये उत्पन्न मानो हो भी गया है तो केन जीवाम, अरे किसके द्वारा हम जी रहे हैं, कौन जिला रहे। ये प्रश्न सुनने से घबराहट नहीं होता, अरे हम खुद अपने प्रयत्न से सुबह से शाम तक लड़ झगड़ करके दौड़ करके जी रहे हैं और यहाँ उपनिषद जो है कौन जिला रहे हैं, सारे पुरुषार्थ एक तरफ कर दिया ना, बिल्कुल असहाय जैसा मालूम पड़ता है ये प्रश्न सुनने के बाद। और फिर भी कितना एक अंधकार एक तम है कि ये अपने अस्तित्व को ही हम संभाल नहीं पाते, ना तो उसका जन्म के बारे में जाना पता है, ना जन्म हुआ है तो उसको कौन रक्षा कर रहे उसके बारे में पता नहीं है, कौन चारा दे रहे है महाराज इस पशु को, कोई चारा देने वाले है कि नहीं। तो ये जो गौशाला में जो पशुशाला में जो गायों को देखते हैं और दया होती है कि एक लड्डू दे दो, थोड़ा चारा दे दो, तो ऐसे हमारी स्थिति है, कोई चारा दे दिया तो जी लिया महाराज, अपना कोई औकात कोई सामर्थ्य, तो कौन है वो। देखिए ये सब प्रश्न अगर किसी के मन में स्पर्श कर जाए वो आध्यात्मिक हुए बिना रह सकता है, बिल्कुल नहीं महाराज। ये तो जो आध्यात्मिक नहीं है, जो कहते कि मैं नास्तिक हूं ईश्वर को मानता नहीं है, वो तो केवल एक अविवेक के कारण अविचार के कारण, ये तो खुद के अस्तित्व को संभालने वाला रक्षा करने वाला खिलाने पिलाने वाला कौन है। एक दिन अगर उनका स्पर्श धीरे से उठा ले वो तो आप अपने स्थान पर बने रहेंगे कि नहीं, यही संशय है, अस्तित्व टिकेगा कि नहीं। तो इसीलिए ये जो प्रश्न है जीवाम केन, भाई किसके सहारे आप जीवित है, जिसके द्वारा आप जीवित रह रहे हैं, के नवा वयम स्रष्टा संतो जीवाम, हम लोग तो जन्म मानो हो भी गया है तो जन्म उत्पन्न हो करके जीवाम इति स्थिति विषय प्रश्न, अरे उत्पन्न होना ही बहुत बड़ी बात नहीं, उत्पन्न हो करके फिर उसको जीवित है, रक्षा है, रक्षित है, तो ये कौन रक्षा कर रहे हैं, सारा किसने उठाकर रखा। इसीलिए इतना नहीं समझना चाहिए कि जो भोजन देते हैं, सुरक्षा देते हैं, वही रक्षा, वही जन्म दिया, वही जीवित रखा, ऐसा नहीं है। भोजन की व्यवस्था, जिसने खुराक दिया है उनको हम कभी याद भी नहीं करते। ये जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, वो भी तो मिट्टी से अपना भोजन उठा रहे कि नहीं, तो वो भी तो जीवित है। तो कौन उत्तद योनि तत्तद अनुसार भोजन दे रहे भाई? कीड़े मकोड़े से लेकर के सब चीजों को आप, जीवों को आप देखिए, उसके अनुरूप भोजन। और केवल इतने दीजिए, कीड़ों को समझ छोड़ दीजिए ना, ये जो शरीर है बचपन में जन्म लेती अन्य प्रकार के भोजन है, और जीव उनका बड़ा होता है फिर उसका फूड जो है चेंज होता है, आज तक चेंज, और फिर वृद्धावस्था आते आते फिर चेंज हो रहा है। एक बॉडी में एक नेचर ही है कि अपने आप चेंज होना ही पड़ेगा, आप चाहो ना चाहो। तो ये कौन सारे ऐसा सिस्टम व्यवस्था बना के रखा, और उस व्यवस्था में आप चाहो ना चाहो अंधा जैसा प्रवर्तन कर रहे हैं। कौन है वो, कौन प्रेरिता है? इसीलिए तो पशु पक्षी को चारा देते हैं कौन? मनुष्य अपने बुद्धिमान है, इसीलिए वही चारा को जो है पका करके खा लेते हैं। महाराज बढ़िया भोजन बनाकर, रसीला चटपटा सा, ठीक है। और देव योनि में कहते भोजन उजन का कोई बनाने का चक्कर नहीं है, वो तो बनी बनाए उनको मिलता है, क्योंकि आप हवन करते हैं ना, तो वो जो पुरोडास आदि है वो तो बनी बनाए हैं, तो वो उनको मिलता है, इसीलिए वो तो फास्ट फूड वाले हैं, उनको भोजन बनाने की कोई चेष्टा नहीं ना, चूल्हा चौकी है। तो ये देखिए तत्तद योनि में पशु पक्षी मनुष्य देव तक सब योनियों में भोजन की व्यवस्था कैसा अनुरूप व्यवस्थित ढंग से बना हुआ है। तो यही प्रश्न है भाई, जीवाम केन, किसके द्वारा हम जीवित रहते हैं? भोजन देने वाला कौन है? क्वच संप्रतिष्ठा प्रलय काले स्थिता अधिष्ठिता नियमिता केन सुखेतरेषु सुख दुखेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम। हे ब्रह्मविदः सुख दुखेषु व्यवस्थाम केनाधिष्ठिता संतो अनुवर्तामः इति सृष्टि स्थिति प्रलय नियम हेतुः किम इति प्रश्न संग्रह। क्वच संप्रतिष्ठा, मूल श्लोक को थोड़ा देखिए, अंतिम में आया ना, जीवाम केन क्वच संप्रतिष्ठा, वो प्रश्न है। संप्रतिष्ठा शब्द का अर्थ लिखते भगवत्पाद आचार्य शंकर, प्रलय काले स्थिता, अर्थात जन्म कहाँ, कैसे, कौन कारण, क्या जन्म, कौन रक्षा करने वाला, और रक्षा करने के बाद प्रश्न है प्रलय काल में कहाँ रहने वाला है, प्रतिष्ठित होने वाले, किसमें स्थित होने वाला है भाई? अधिष्ठिता, फिर प्रश्न करे अधिष्ठिता केन सुखतरेषु, अधिष्ठिता शब्द का अर्थ है नियमिता, भाई किस के नियंत्रण में आप है, कोई नियंता है कि नहीं? जगत नियंता बोल करके ईश्वर को ऐसा मत मानिए, और थोड़ा गहराई से विचार कीजिए, नियमन करने वाला कौन है? अधिकतर समय तो ऐसा लगता है कि मैं अपने सुख दुख के प्रति, कर्म के प्रति नियमन तो मैं करता हूं, चाहे अच्छा ही हो चाहे बुरा हो, परंतु किसी भी तरीके से अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, कौन नियमन करने वाला? अधिष्ठिता नियमिता। और केवल उतना ही नहीं, अगर आप ही अधीन होते नियमन करने वाले, तो कोई जानबूझ करके दुख लेता महाराज? हमेशा सुख ही सुख लेते नहीं? तो कहीं ना कहीं हम विवश है कि नहीं, कि मजबूर है कि परिस्थिति परिवेश सिचुएशन जैसा हो हमको जाना पड़ेगा, चाहे वो कितना घोर कष्ट क्यों ना। तो मजबूरी किस बात की, जब अपने अधीन आप कर सकते हैं तो इसका मतलब है हमारे हाथ में कुछ भी। तो यही कहा भाई, अधिष्ठिता के न सुख सुख दुखे सुवर्तामहे, चाहे वो सुख रूप में बर्तन कर रहा है अथवा दुख रूप में। जो यात्रा सुख रूप में अथवा दुख रूप में वो जो प्राप्त कर रहा है वो किसके अधीन है, कौन प्रेरिता है? सुख दुखे सुव्यवस्थाम के नाधिष्ठिता संतो अनुवर्तामहे इति। अर्थात और फ्रेम करके बता रहे, सृष्टि स्थिति प्रलय नियम हेतु किम इति, सृष्टि स्थिति और प्रलय के हेतु कौन है इति प्रश्न संग्रह। कल फिर द्वितीय मंत्र का विचार करेंगे। हरिओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरा सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तो पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।